न दिल में द्वेष धारे थो, न कहे सारी सआ उन जी, न कहे दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद थो ज्ञानी। न दिल में द्वेष है, न किसी से है कंपटीशन है, न कोई दुनिया की परिस्थिति की फरियाद है गहराई में। वो समझता कौन? उत्तम योगी। जो उत्तम योगी है वही सन्यासी, और जो सन्यासी है वही उत्तम योगी है। एक ही सिक्के के दो पहलू। जो बाघ है, बाघ कांटे से जुड़ा है, कांटा बाघ से जुड़ा है, सन्यास योग से जुड़ा है, और योग सन्यास से जुड़ा है। योग से बुद्धि शुद्ध होती है और सन्यास से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। योग में तभी प्रवृत्ति होती है जब तुम्हारा लक्ष्य सन्यास है, और सन्यास में तब पहुंचते हो जब तुम्हारा सहारा योग है। यदि तुम्हारा सहारा योग नहीं है तो तुम सन्यासी नहीं। यह भगवान कहते हैं, स सन्यासी च योगी च न नीरा अग्निर न चाक्रिया। निर अग्नि हो गए सन्यासी लोग। निराग्नि का अर्थ करते हैं कि हमने सन्यास ले लिया, अब अग्नि को न छुएंगे, भोजन न बनाएंगे, बना बनाया खाएंगे, अब पानी गर्म नहीं करेंगे, जो भी मिल गया उससे नहाएंगे, क्योंकि सन्यासी हैं, कर्मों को बढ़ाएंगे नहीं। इसलिए अग्नि को छूना छोड़ दिया तो काफी चीजें छूट जाती। ब्रह्मचारी लोग और योग में अच्छी गति करने वाले लोग कहते हैं कि केवल ये बाह्य अग्नि ही अग्नि नहीं है, चित्त में काम क्रोध लोभ मोह भी तो ये अग्नि है। काम क्रोध अर लोभ मोह की, तुलसीदास कहते हैं, जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है, क्या मूरख विद्वान, सियावर रामचंद्र की जय। काम की क्रोध की लोभ की अग्नि जब तक भीतर है तब तक बाहर की अग्नि को छूना तुमने छोड़ दिया, लेकिन अंदर की अग्नि तो तुमको छू ही रही है। अंदर में जठराग्नि है, जिह्वा पर भी तेजो तेज तत्व है, तो बाहर की अग्नि श्री कृष्ण कहते छोड़ देने से काम नहीं चलता, भीतर की अग्नि भी तुम्हारी नहीं है, ये भी पांच भूतों में हो रहा है। ऐसा ज्ञान यदि तुम्हारा लक्ष्य है, ऐसा ज्ञान यदि तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम योग में आरूढ़ हो रहे हो। श्री राम। आरुरुक्ष मुनेर योगम। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, और आरूढ़ हो गया तो फिर कर्मों से बचकर शांत होना उसका कर्तव्य है। जब आदमी इधर उधर भटक भटक के परेशान हो जाता है, जगत के भोग 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 के परेशान हो जाता है, धक्के मुक्के खा के चल चल के थक जाता है, तो सवारी की इच्छा करता है। श्री राम। पथिक जब पैदल चल चल के थक जाता है ठोकरे खा खा कर, तो फिर किसी सवारी की अश्व की इच्छा करता है। तो पैदल चलने के बाद, संसार में धक्के मुक्के खाने के बाद, फिर मन रूपी अश्व पर चढ़ना होता है। अब मन रूपी अश्व पर तुम उड़ के नहीं चढ़ सकते हो, पहले तो तुम्हारा एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा पैर घोड़े के पैंगड़े में होना चाहिए, और फिर कुद का मार के तैयार। तो दूसरा पैर भी पृथ्वी से हट जाता है, लेकिन पहले एक पैर हटाइए और पैंगड़े में ठीक से जमाइए। पैंगड़े में तो जमा लिया, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य प्रयोजन जो घोड़े पे बैठना नहीं है, तो घोड़े से गिरना होगा। पैंगड़े में तो पैर डालो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य घोड़े पर सवार होने का होना चाहिए। निष्प्रयोजन पैंगड़े में पैर डालोगे तो महाराज, एक टोंटियो ऊंचो बीजो टोंटियो नीचो तुम्हारी गर्दन दहेड़ाती जैसे। जो लोग कर्म करते रहते हैं लेकिन मन रूपी अश्व पर सवार होने का जिनका उद्देश्य नहीं है, वे लोग कर्म के पैंगड़े में उलझ जाते हैं, और जो लोग कर्म छोड़ के बैठे हैं वो प्रमाद के पैंगड़े में कीचड़ में घुस जाते हैं। कोई कोई सतगुरु का प्यारा गुरमुख होता है, वो कर्म के पैंगड़े में पैर डाल के दूसरा पैर घुमा के घोड़े पर सवार हो जाता है, और फिर घोड़े को काबू करना उसके दाएं हाथ का खेल हो जाता है। जब तक पैंगड़े में पैर डालकर दूसरा पैर घुमाकर दूसरे पैंगड़े में नहीं आता, तब तक अश्व तुम्हारे अधीन दौड़ेगा और तुम्हारे को यात्रा कराएगा। ये सपना देखना छोड़ लो। घोड़े की पूंछड़ी पकड़ी, घोड़ा जहां जाएगा वहां तुम घसीटे जाओगे, लेकिन घोड़े की लगाम हाथ में आ गए और पेंगड़े के द्वारा आप घोड़े पर सवार हो गए, तो आप जहां चाहते हो, जो तुम्हारा उद्देश्य है, संसार में सफलता चाहते हो तो भी और परमात्मा को पाना चाहते हो तो भी, तो तुम्हारा मन थिर, तुम्हारा तन थिर, तुम्हारी सूरत थिर, तुम्हारी नैन थिर हो जाए तो तुम बेमाप हो जाओगे। क्यों? कि बेमाप परमात्मा है और तुम और परमात्मा में वास्तविक में कतई दूरी नहीं है, एक तिनके भर का भी फासला नहीं है, फिर भी फासला हो रहा है। उसका कारण केवल तुम्हारा देह में आत्मबुद्धि हो गई है, और देह में आत्मबुद्धि हो गई, उस आत्मबुद्धि में आत्मबुद्धि होने के कारण जड़ता आ गई बुद्धि में, उस बुद्धि की जड़ता को हटाने के लिए श्री कृष्ण कहते अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निराक निरचाक्रिया। कई ब्रह्मचारी लोग अर्थ करते हैं कि अग्नि का त्याग माना स्त्री है अग्नि, स्त्री है अग्नि और पुरुष है घी का गोला। अग्नि के समक्ष घी का गोला रख दिया तो वो बेचारा बह जाता है। ऐसे ही जिसको परमात्मा पाना है तो वो अपने जीवन को नाश न करे, अग्नि का त्याग कर दे। जैसे पुरुष के लिए स्त्री अग्नि है, ऐसे स्त्री के लिए पुरुष का संग भी अग्नि जैसा है। स्त्री स्त्री आपस में बैठेगी तो विकार नहीं होगा, लेकिन स्त्री किसी युवक के समक्ष देखेगी तो हो सकता है उसे विकार उठे, युवक युवती को देखेगा तो विकार उठेगा, और उन विकारों में वो कामनाएं उठेगी तो राम का आनंद गायब हो जाएगा। तुलसीदास कितना सुंदर कहते, जहां काम तहां नहीं राम, जहां काम तहां नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके रवि रजनी एक ठाम, सियावर रामचंद्र की। जब कामनाएं होती तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है और आप अपने को लाचार मानने लगते हैं, परिस्थितियों के गुलाम मानने लगते हैं, और मैं तो ये हूं दीनहीन हूं। और जब कामनाओं से किसी भी हिसाब से गुरु उठा देते हैं, या युक्ति से, प्यार से, मार से, ताड़ से, भगवान की गुरु की कृपा होती है, और थोड़ा ही समय जब आप कामनाओं से दूर होते हैं तो आपको अपना मनोबल पर, अपने संकल्प बल पर, अपने कर्म बल पर, अपने लक्ष्य बल पर उत्साह होता है, हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। श्री राम। तो जितनी जितनी कामनाएं कम होती है उतना उतना राम का फोर्स बढ़ जाता है और उतना उतना राम की आवाज सुनाई पड़ती है, और जितनी कामना जोरदार होती है तो आदमी बैरा हो जाता है, राम की आवाज सुनता नहीं, काम की आवाज ही राम की आवाज समझ लेता है। ऐसा नहीं कि आकाशवाणी हजरत मूसा को हुई, ईसा को हुई, महावीर को हुई, लीलाशाह बापू को हुई, आसाराम बापू को हुई और तुमको नहीं हो सकती है। भगवान तो सतत बोलते रहते बाबा। शास्त्र का एक नियम है कि जब कोई पूछे नहीं तो बोलना नहीं चाहिए, निष्प्रयोजन उपदेश नहीं देना चाहिए, पूछे कोई तभी बोलना चाहिए। भगवान से तो हम पूछते नहीं फिर भी बोलते रहते हैं। भाई देखो, एक आदमी जा रहा है और अंधा है, सामने खड्डा है, अंधा है और सामने अंगारे पड़े हैं, नंगे पैर हैं, तो अब वो पूछे चाहे न पूछे, क्योंकि उसके पूछने की क्षमता ही नहीं, फिर भी दयालु पुरुष बोल देता है ताकि ये कहीं किनारे लग जाए, क्योंकि भगवान सबका सुहृद है। मित्र बिना पूछे भी बोलता है, भगवान तो मित्र भी है, माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, सखा भी है, जब सर्वस्व है तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं पड़ता कि हम जब पूछे तब बोले नहीं, वो बोलता रहता है, कभी न कभी तुम सुन लो उस आशा में वो सदा के लिए गुनगुनाता रहता है, बोलो भगवान अंतर्यामी देव की। श्री राम, जय जय राम, श्री राम। तुम्हारे अहंकार का बोलना बंद हो जाए तो भगवान का बोलना सुनाई पड़ेगा। भगवान की आवाज इन बाह्य कानों से नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन दिल की शांत दशा में उस साक्षी चैतन्य परमात्मा का आनंद रूपी आवाज सुनाई पड़ सकता है। खूब शांत होते जाओ, संकल्पों की परंपरा से जीव की शक्ति क्षीण होती जाती है। जितने संकल्प कम होते जाएंगे उतना योग में आरूढ़ होता जाएगा साधक। मन रूपी घोड़े पर यदि दोनों पैर दोनों तरफ रख के ठीक सवार हो जाओगे तो ये घोड़ा गंतव्य स्थान पर लक्ष्य पर पहुंचा देगा। फिर पता चलेगा कि मन का अपना प्रभाव कुछ नहीं। खूब शांत होते जाओ, देखते जाओ मन के विकल्पों को, मन के विचारों को निहारते जाओ। नींद न आ पाए, मनोराज न हो पाए, आंख खुली रखो तो आधी खुली रखना या तो बंद कर देना, हो सके तो अर्धमुंदित आंख श्वासोश्वास को देखते जाओ। सो हम का जाप कुदरती चल रहा है, उसमें स्थिर होते जाओ। बाहर का घोड़ा तो बड़ा जबरा दिखता है, मन रूपी घोड़ा तो उस घोड़े से भी करोड़ गुना जबरा है, और यदि तुम सो हम के स्वरूप में स्थिर हुए तो बाहर के घोड़ों से करोड़ गुना वो बारीक और छोटा भी है। यदि बात को समझ लेते हैं, टल आ जाती है तो काम बड़ा आसान सरल है। जो तन को मन को नयन को स्थिर कर सकता है, अथवा तन मन और नयन को स्थिर करने के नियम को जो पालता है, उसका था कोई कल्प नहीं सकता, उसकी गरिमा कोई माप नहीं सकता। और उस गरिमा को पहुंचने के लिए प्रारंभिक निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करने से मन रूपी घोड़े के पैंगड़े में एक पैर आ जाता है, दूसरा पैर उठाकर पृथ्वी से घोड़े के दूसरे पैंगड़े पर में डाल दिया जाता है। ऐसे ही निष्काम कर्मता ये योग का बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन जब पचने लगता है, हजम होता है, तो फिर अंतरंग साधन होने लगता है। जैसे शिशु को माँ का दूध अथवा शीशी का दूध पचने लगता है, जठरा उसकी प्रदीप होती है, कुछ बढ़ता है तो मक्खन और रोटी, मक्खन और मिश्री भी पचा लेता है। ध्यान मक्खन मिश्री है, निष्काम कर्म पैपान है, और सन्यास परिपक्व दशा है। अग्नि का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं,
अग्नि को छूने वाला भी सन्यासी नहीं, कर्म छोड़कर बैठा है वह भी सन्यासी नहीं, कर्म में आसक्त है वह भी सन्यासी नहीं, सब कुछ छोड़ के समाधि में बैठा है ये स्थिति भी कृष्ण को मंजूर नहीं, समाधि छोड़कर सब में बिखर रहा है ये स्थिति भी कृष्ण को स्वीकार नहीं, पत्नी में आसक्त होकर विकारों का शिकार बन रहा है ये भी श्री कृष्ण को मंजूर नहीं, पत्नी रूपी स्त्री रूपी कामना रूपी अग्नि को छोड़कर कंदराओं में बैठा है वो भी स्थित नहीं, श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं। श्री कृष्ण तो कहते हैं करने योग्य कर्म, कर्म चार प्रकार के होते हैं, कर्म में चार प्रकार की आसक्ति होती है, एक तो कर्म आसक्ति, दूसरी फल आसक्ति, तीसरी त्याग आसक्ति। चौथी कर्म आसक्ति, जैसे किसी को कर्म करने की आदत पड़ गई, कर्म किए जा रहा है उद्देश्य कुछ नहीं, ये कोई निष्काम कर्म नहीं है, कोई लट्ठी से पानी कूट रहा है निष्प्रयोजन है, कर्म में प्रयोजन होना चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं, और प्रयोजन में खबरदारी होनी चाहिए कि हमारा प्रयोजन नश्वर है या शाश्वत है, हमारा प्रयोजन मुक्ति है या बंधन है, हमारा प्रयोजन परमात्मा है, हमारा प्रयोजन राम है कि कामना तृप्ति है, इस बात की समझ के साथ जो कर्म है वे तुम्हें कर्म कर्मों से छुड़ा देते हैं, जैसे कांटे से कांटा निकलता है ऐसे ही कर्मों से कर्म कट जाते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स्वसन्यासी च योगी च न निराकृतचाक्रियाः यम संन्यासमितिर प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवाः न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संकल्पों का त्याग, वैसे देखा जाए तो सब अद्वितीय परमात्मा है, सब एक परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, उस स्थिति को न समझने के कारण रथी और सारथी के रूप में भगवान रथी बनकर तुम्हारे जीवन के रथ को चला रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा तब देते हैं जब कामनाओं से चित्त खाली होता है, अहंकार से चित्त खाली होता है, जितना जितना अहंकार और कामनाएं कम होती है उतना उतना परमात्मा प्रेरणा का स्वाद आता है। जप से प्राणायाम से मौन से तुम्हारी कामनाएं कम होने लगती है, वाणी का मौन के साथ साथ धीरे धीरे मन का मौन होने लगता है, मन का मौन बड़ी ऊंची दशा है। अच्छे अच्छे भले भले योगी इंद्रियों का मौन कर लेते हैं लेकिन मन का मौन नहीं हो पाता है, कई लोग तो इंद्रियों का मौन भी नहीं कर सकते, कर्म आ सकती है फल आ सकती है, अकर्मण्यता की आ सकती है, अकर्ता की आ सकती है, इन आसक्तियों में अकर्ता भाव की आ सकती, कर्ता भाव की आ सकती, कर्म की आसक्ति फल की आसक्ति, इन चार आसक्तियों में उलझ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन चारों में से एक भी आसक्ति तुम्हारे में ना हो, दुष्कृत्य तो छोड़ देना ही चाहिए लेकिन सत्कृत्य छोड़ने का मौका आए तो भी वो छूट जाए, कृत्य मात्र छोड़कर तुम अपने आप में बैठने की क्षमता ले आओ तो समझो तुम सन्यासी हो, तुम योगी हो। गुफा में बैठने से ही तुम योगी नहीं हो, कपड़े रंगने से ही तुम सन्यासी नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने घर की खबर पड़ जाए, तुम्हें अपने महिमा की गरिमा की खबर पड़ जाए, जिस समय तुम उपयोग करना चाहो इंद्रियों का कर लो, जिस समय मन का उपयोग करना चाहो कर लो, बुद्धि का उपयोग करना चाहो कर लो, पदार्थों का उपयोग करना चाहो कर लो, और जिस समय ब्रेक लगाना चाहो तो लगा दे। लेकिन ये चाह तुम्हारी शत्रु या मित्र भाव से प्रेरित न होनी चाहिए, ये चाह में तुम्हारे विकार न होने चाहिए, इन चाहों में तुम्हारे काम न होना चाहिए, इन चाहों के द्वारा तुम्हारा राम का पैगाम चमकना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ यदि समझ में आ जाए, इस श्लोक की यदि गहराई का स्वाद आ जाए, तो आप खुली आंख जनक की नाही समाधि का अनुभव कर सकते हैं। खुली आंख समाधि तब तक नहीं लगती जब तक बंद आंख की समाधि का अभ्यास नहीं किया। ध्यान सन्यास की यात्रा करता है, ध्यान के द्वारा सन्यास की यात्रा तय होती है। ध्यान में यदि सन्यास लक्ष्य नहीं है तो ध्यान में रुचि नहीं होगी। लक्ष्य तो तुम्हारा सन्यास होना चाहिए। सन्यास का अर्थ है कि इच्छाओं और वासनाओं का कर्तृत्व का न्यास, कर्तापना भोक्तापने का न्यास। जो करता है वो भोगता है और जो भोगता है वो सुखी दुखी है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो निष्प्रयोजन हो। कर्म के पीछे प्रयोजन है और तुम्हारा प्रयोजन सन्यास होना चाहिए। तुम्हारा प्रयोजन यदि सन्यास है तो तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक है। नादानुसंधान शब्दानुयोग सुंदर है, शब्द सुनते सुनते मन लीन हो जाता है, लेकिन मन लीन होने का भी साक्षी होना जरूरी है। ध्यान करते करते मन शांत हो जाता है, लेकिन शांति का भी साक्षी तुम हो। कर्म करते करते इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती है, मन विक्षिप्त हो जाता है, विक्षिप्त होने के भी तुम साक्षी हो जाओ। श्री कृष्ण बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। गौरांग का मित्र 5 वर्ष का था। मां ने कहा, बेटा पड़ोस से अग्नि ले आ। वो अग्नि लेने गया तो जीव गोस्वामी जी ने चिमटा उठाया अग्नि का, बड़ा अंगारा लेकर उस बच्चे को कहते, ले जा, बर्तन तो नहीं हाथ में ले जा। बच्चे ने चहूं और देखा, कोई साधन नहीं ले जाने का। बच्चे ने क्या करा कि राख उठा ली, अपने हाथ पर रख दी और फिर हाथ लंबे किए, बोले इस पर धर दो। ले गया मां के पास। वो सज्जन उसके पीछे पीछे गए, देखा कि बच्चा कितना चतुर है। अग्नि लेने को आया है, अग्नि उठाने का कोई साधन नहीं तो राख धर दी हाथ पर और अंगारा लिए जा रहा है। अंगारा हाथ में होते हुए भी आग के सेक से बचा है। ये संसार के अंगारे को भी इसी तरह उठाकर किनारे लगा देगा ये बच्चा होशियार। मां को कहा कि बेटा मेरे को दे दो, ये पुत्र तुम्हारा मेरे को दे दो। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि विकारों के जो हुए बाहर के अंगारे जैसे लेने की कला थी बच्चे में, ऐसे ही तुम्हारे पास भीतर के विकारों को उठाने की कला हो। तुम काम आए तो जल न जाओ, क्रोध आए तो जल न जाओ, लोभ आए तो सुकड़ बिखर न जाओ। तुम्हें कर्मों की राख लेकर उन पर इन विकारों को अपने यथास्थान पर रखकर भोजन भाजन बना के अपना जीवन की यात्रा तय करो। इसी को बोलते अनाश्रिताः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, अनाश्रिताः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, ससन्यासी च योगी च न निराग न चाक्रियः, ससन्यासी च योगी च न निराग न चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है। कर्म के फल का परिणाम न चाहे, कर्म के फल हमेशा नाशवान होते हैं, तो अशुभ कर्म तो न करे, किन शुभ कर्म का फल जो स्वर्ग है या यश है या वाहवाही है उसकी भी जो इच्छा नहीं करता है तो हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है, और ध्यान की क्षमता बढ़ी तो अपने आप को जानने का सौभाग्य मिल जाता है। कर्म करता है वह सन्यासी है तथा योगी है। वस्त्र रंगने का नाम सन्यासी नहीं, कर्म छोड़ने का नाम सन्यासी नहीं, कर्म करते ही रहने का नाम सन्यासी नहीं, लेकिन यथोचित कर्म करते हुए भी कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर जो कर्म करता है वह सन्यासी है और वह योगी है। जिसको सन्यास कहते हैं वही योगी है, और जिसको योग कहते हैं वही सन्यासी है। ये नाम दो मात्र है, सन्यासी और योगी, बाघ और कांटा दो नाम मात्र है, रुपया एक ही है, ऐसे ही लक्ष्य एक ही है, सन्यास कह दो अथवा योग कह दो। तो जनक पक्के सन्यासी हैं, जनक पक्के योगी हैं, सुखदेव बड़े सन्यासी हैं, योगी हैं, अष्टावक्र पूरे सन्यासी हैं, योगी हैं। तो सन्यास और योग एक ही लक्ष्य का अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे साईं और आशाराम जी अथवा साईं और बाप जी, तो एक ही व्यक्ति के दो नाम है, बाप जी और साईं, ऐसे ही सन्यास और योग एक ही चीज के दो नाम है। तो जो सन्यासी है वही योगी है, जो योगी है वही सन्यासी है। घर बार छोड़ने का नाम सन्यास नहीं, घर में गूंधे रहने का नाम सन्यास नहीं, अग्नि को न छूने का नाम सन्यास नहीं, अग्नि में तपते रहने का नाम सन्यास नहीं, अग्नि उठाया जा रहा है और अग्नि के सेक से पार है वह सन्यासी है, वह जीवन मुक्त है। एक सन्यासी बाबा अग्नि ताप रहे थे, भक्त ने आकर कहा कि महाराज सन्यासी को तो अग्नि छूना अग्नि तापना मना है, अग्नि का सानिध्य करना ही मना है। तो बाबा जी कहते हैं कि पेट में जठराग्नि है, जीवा पर तेज तत्व है, बाहर जो अग्नि अग्नि को ताप रही है, मैं तो इन दोनों अग्नियों का दृष्टा, मैं इन दोनों अग्नियों का साक्षी, असंग निरंजन आनंद स्वरूप हूं बेटा, मैं कभी अग्नि को छूता नहीं, अग्नि को लेता नहीं देता नहीं, मैं दृष्टा मात्र हूं। भक्त चरणों पे गिर गया, बाबा आप सन्यासी हैं, वस्त्र भले आपके श्वेत हैं लेकिन आपका हृदय पूरा पूरा रंगा है। ओम 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 ओम। इसी बात को श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। कवि कहता है, वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। निज आत्मा का, अपने आप को यदि जान लिया तुमने तो तुम्हारे कर्म तो होते चले जाएंगे, लेकिन कर्मों में कर्तृत्व न आएगा, तुम्हें कर्म करने का भी मजा आएगा। कर्म करने का मजा तब है कि कर्म छोड़ने की भी पूरी तैयारी हो। रुपया रखने का तुम्हें तब अधिकार है कि रुपया छोड़ना पड़े तो देर न लगे। जीने का तुम्हें तभी अधिकार है कि मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। एक सम्राट ने महल बनाया था, चारों तरफ खूब खबरदारी रखी, कहीं जमदूत आ न जाए, मौत आ न जाए, खूब बंदश रख दी, खिड़कियों को भी खूब बंद रखा। महाराज खिड़कियां भी बंद करा दी, एक ही दरवाजा रखा। दूसरा मित्र साथी आया, राजा देखता है कि हाँ ये महल बढ़िया है, सुरक्षा का है, मैं भी अपना ऐसा ही महल बनवा लूंगा। फुटपाथ पे एक फकीर था मस्त, राजा जब उसको अलविदा देने आया तो फकीर दोनों को देखकर रो रहा है। धार्मिक राजा ने पूछा कि बाबा जी तुमको किसने सताया, तुम क्यों रो रहे हो? बाबा कहते हैं कि किसी ने सताया उसलिए नहीं रो रहा हूं, महल में कुछ कमी रह गई है उसलिए रो रहा हूं। दोनों चकित थे क्योंकि दोनों उस महल से प्रभावित थे, सब द्वार बंद थे। बाबा ने कहा कि इस महल में एक कमी रह गई है। सम्राटों ने पूछा क्या कमी रह गई? कि एक द्वार रह गया है, इससे मृत्यु आ सकती है, घुस सकती है। राजा अंदर बैठ के ये द्वार भी फिट करा दे, दोनों सम्राटों ने कहा ये द्वार बंद करने से हमारा जीवन ही जी नहीं सकते, ये तो मृत्यु आ जाएगी। बोले जब मृत्यु आ जाएगी इस द्वार से तो फिर और द्वार बंद क्यों किए, और द्वार भी खोल दो, सारे द्वार खोल दो, मृत्यु को आमंत्रण दो, मौत के लिए नितांत तैयार रहो, यही जीने का तरीका है। मौत से घबराते फिरोगे, मौत से बचते फिरोगे, द्वार बंद करते फिरोगे, मौत से बचने का तुम्हारा प्रयोग ही मौत ले आएगा। मौत से बचने के लिए यदि द्वार बंद कर दिया तो उसी समय मौत हो जाएगी। ऐसे जब तुम्हारा शरीर छोड़ने का मौका है तो तैयार, धन छोड़ने का मौका है तो तैयार, काम छोड़ने का मौका है तो तैयार, कर्म फल छोड़ने का मौका है तो तैयार, आश्रम छोड़ने का मौका है तो तैयार, घर छोड़ने का मौका है तो तैयार, अटका जोगी फटका छाला, जत का जाला तित का खाला, ऐसा जब जीवन हो तो ये जीवन मुक्त दशा होती है। ये पक्की पहाड़ी भाषा है। एक बार नैनीताल छोड़ने का मौका आया स्वामी जी में, तो दर्शन छोड़कर सानिध्य छोड़कर जाना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आ गया थी, जाओ जाओ तो चल दिए, चल दिए तो माली दौड़ता है, बोले क्या क्या स्वामी जी, क्या गया, जा रहा हूँ। देखा कि मुस्कुरा रहे भाई, तो तुमको दुख नहीं होता, चेहरा नहीं उतरता। तो बड़े भाई ने कहा कि तो जोगी है, अटका छोली अटका जोगी पटका छाला, जो छाल है मृग छाल है उसको पटक, अटका जोगी पटका छाला, जित का जाला तित का खाला, जहां गया खा लिया, जहां जाया रह लिया। तो तुम्हारा जीवन किसी देश विशेष में, किसी वस्तु विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में, किसी कर्म विशेष में चिपकना नहीं चाहिए। यह है कर्म की कुशलता। कर्म तो करो, कुशल कौन है आदमी कि कोयले की खान में जाए और दाग न लगे। ऐसे कर्म के मैदान में रहते हुए कर्म में आसक्ति न हो, ये कर्म कुशल है। योग कर्म सुकौशल। कर्म की कुशलता यह कि उन्हीं कर्मों से तुम्हारे कर्म कट जाए। कांटा चुभाने की कुशलता यही है कि चुभा हुआ कांटा निकल जाए, नहीं तो बेवकूफी। कांटा दर्द कर रहा है, पीड़ा कर रहा है, बोले क्या करें, एक कांटा चुभा है, फिर दूसरा चुभाने की क्या जरूरत है, बैठे रहो, पीड़ा नहीं जाएगी। दूसरा आदमी है, कांटा चुभा रहा है, लेकिन ऐसी जगह चुभा रहा है, ऐसे ढंग से चुभा रहा है कि वो चुभा हुआ कांटा भीतर जा रहा है और अलग अलग छेद हो रहे हैं। और तीसरा एक ऐसा आदमी है कि कांटा चुभा है और दूसरा कांटा लेकर ऐसे ढंग से चुभाता है कि चुभा हुआ कांटा बाहर आ जाता है। इसी को बोलते अनाश्रिता कर्म फलम, अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यः कार्यम। ससन्यासी च योगी च, ससन्यासी च योगी च, न निराग निर्यन चाक्रियः, यम सन्यासमितिर प्राहुर योगम, यम सन्यास तम विद्धि पांडवः। न सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, न सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, यम सन्यासमितिर प्राहुर योगं तं विधि पांडवः, यं सन्यासमिति प्राहु योगं तं विधि पांडवः। यह लिखा है योगं तं विधि पांडवः, न सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो संकल्पों का त्याग किए बिना हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। भगवद गीता छठे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। तो संकल्पों का त्याग करना ये परम दशा है।
ये ऊंची दशा है। भगवान का दर्शन हो गया लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं किया तो मजूरी बाकी रह गई। कृष्ण का दर्शन किया लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं किया तो गड़बड़ है। राम का, रहमान का, अल्लाह मियां का दर्शन हो गया लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं हुआ तो गड़बड़ है। तुम सब कुछ पढ़ लिए लेकिन संकल्पों का त्याग नहीं हुआ तो तुम्हारी वाणी शास्त्र नहीं बनेगी। तुम अनपढ़ हो, अंगूठे छाप हो, और संकल्पों का त्याग हो गया तो तुम जो बोलते हो वेद बोलते हैं। हम ही सांग तो वेद सांगते, हम ही बोल तो वेद बोलते।